आप हैं SBS हिंदी के साथ।
सुधीश जी नमस्कार।
नमस्कार अनीता जी।
सुधीश जी वहाँ पर प्रधानमंत्री श्री मोदी कोलकाता गए हुए थे और बेलूर मठ में भी वो गए और अपने भाषण में उन्होंने CAA के लिए इसको पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है।
देखिए पहले उन्होंने बेलूर मठ की परंपरा के अनुसार पूजा की। विवेकानंद जी का स्थापित संस्थान है, वो बड़ा भव्य मंदिर है, ये हुगली किनारे बना हुआ है और इसका स्थापत्य सभी धर्मों के स्थापत्य को लेकर के बनाया हुआ है ये। उसके बाद उन्होंने वहाँ यूथ को संबोधित किया, युवा दिवस था कल
जी।
और उसको संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत अगर हम विवेकानंद के मार्ग पर चले तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। फिर उन्होंने ये CAA पर भी बात की, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर भी बात की, जो विवाद चल रहा है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो विवाद चल रहा है वो कुछ मिसगाइडेड लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, इसमें हम किसी की नागरिकता को छीन नहीं रहे, बल्कि विदेश में जो प्रताड़ित हैं तीन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं और इसके लिए तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे अलावा और कौन उनको ऐसी मदद कर सकता है। और ये तो हम गांधी जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि इन देशों में अगर कोई प्रताड़ित होगा तो हम उसे स्वागत करेंगे, उसका उसको नागरिकता देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि CAA की वजह से यानी नागरिकता कानून पर जो चल रही बहस है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो एंटी माइनॉरिटी चेहरा है वो एक्सपोज हो गया है। उसी के साथ में अगर हम इस खबर को भी देख लें तो अच्छा रहेगा। अमित शाह जी भी कोलकाता में थे, उन्होंने एक रैली में थोड़ा सा ज्यादा तीखा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि JNU में बहुत से लोग भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं, उनको जेल क्यों नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाएंगे उनको हम जेल भेजेंगे। एक प्रकार से उन्होंने चेतावनी दे दी है उन लोगों को जो ऐसे स्लोगन लगाते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है, मस्खरापन भी है, कुछ लोग सिर्फ चिढ़ाने के लिए ऐसे स्लोगन लगा देते हैं, उनका मान ही नहीं होता वो, और वो चढ़ा देते हैं, चढ़ाने से फिर उन पर एक्शन हो जाता है तो वो खबर बन जाते हैं। फिर भी किसी को इंटरनेशनल स्लोगन लगाने की ऐसी आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, हमारी समझ में नहीं आता। जो लोग लगाते हैं वो गलत करते हैं और अब तो बहुत कम है जो इस तरह की बात करते हैं
जी। ये JNU में जो हिंसा हुई थी उस पर पुलिस की जांच तो हो ही रही है और दूसरी ओर इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, तो अब वहाँ पर दाखिलों की क्या स्थिति है और जांच की क्या स्थिति है?
देखिए बड़ा ही उलझा हुआ मुद्दा है। 5 जनवरी की शाम को जो वहाँ हिंसा हुई है
जी,
उसमें नकाबपोश लड़के बहुत सारे थे, लड़कियां भी थी जो हिंसा कर रहे थे। उसे लेकर के जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है दिल्ली पुलिस की, उनके हिसाब से 9 लोग उनकी नजर में हैं जो संदिग्ध हैं, जिन्होंने हिंसा की हो सकती है। उन पर अभी केस नहीं फाइल किया गया है लेकिन वो उनकी नजर में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 9 में 7 जो है वो लेफ्टिस्ट हैं SIT के अनुसार और 2 नॉन लेफ्ट हैं यानी राइट वाले हैं, राइटिस्ट हैं, संभव हो ABBB के हों। लेकिन इंडिया टुडे नाम का जो एक संस्थान है, मीडिया संस्थान है, उसने एक स्टिंग किया जो बहुत जबरदस्त स्टिंग था और उसने उन लोगों से बात की तो मालूम पड़ा कि बहुत से ABBP के लोग उसमें शामिल थे, उनके इंचार्ज भी शामिल थे और बाहर से उन लोगों को बुलाया था, हथियारबंद लोगों को बुलाया था, डंडा लेकर के बुलाया था, वो रॉड लेकर के आए थे और पुलिस की होते हुए भी वो आराम से वहां से बच करके निकल गए। तो ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने उनकी मदद की और VC ने उनकी मदद की वगैरह वगैरह, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो बहुत से लोग हैं जिनके नाम आए हैं, करीब 4 लोगों के नाम दिए इंडिया टुडे वालों ने और बहुत से उनके पास टेप है जो उन्होंने पूरी तरह से अभी नहीं दिखाए, जो शायद वो पुलिस वालों को ही देंगे। उस आधार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लिप्त पाई गई है ऐसा लगता है। इस पर विवाद है कि हम नहीं है, कि हम नहीं है, लेफ्ट वाले कहते हैं कि हम नहीं है, राइट वाले कहते हैं कि हम नहीं है। तो पूरी जांच आएगी सामने जब पूरी जांच हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो मिली हुई है और उसके लिए वो किसी रिटायर्ड जज से जांच करवाना चाहते हैं। फिलहाल जांच का स्तर यह है कि पूछताछ अभी शुरू हो गई है, जल्दी इसमें से भी कुछ निकल के आएगा और मालूम पड़ेगा कि कौन लोग उस हिंसा में थे, जो ऐसी हिंसा अभूतपूर्व है जेएनयू के इतिहास में।
जी, और अभी दो फिल्में रिलीज हुई हैं, छपाक और तानाजी, तो कैसी स्थिति है दोनों की?
छपाक वो कहानी है जो एक एसिड अटैक की हुई, जो एसिड अटैक से जो घायल हुई युवती थी, उसकी करुण कहानी है ये।
जी,
अब उसमें ये हुआ कि जब ये रिलीज होने वाली थी दो दिन बाद, उससे पहले ही जेएनयू में जो हिंसा हुई थी, तो जेएनयू के छात्रों को हमदर्दी देने के लिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ खबरें ऐसी आई मीडिया में कि इनकी मार्केटिंग एजेंसी ने इनको कहा कि आप जाइए, जाकर के उनके संग खड़े होइए ताकि सिंपैथी मिले, और चूंकि ये फिल्म उदार नौजवानों की फिल्म है, उदार लोगों के लिए फिल्म है कि जिन पर एसिड डाल दिया जाता है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, एक करुणाक्रंदित फिल्म है, तो शायद आपको अच्छी इसमें पब्लिसिटी मिल जाएगी और आपकी पिक्चर हिट हो सकती है। चूंकि प्रोड्यूस भी दीपिका पादुकोण ने की है और इसकी डायरेक्टर मेघना गुलजार है, तो ये सब था, वो गई, उन्होंने दीपिका जी वहाँ 10 मिनट खड़ी रही, उन्होंने हाथ जोड़े, उन घायल प्रेसिडेंट के हाथ जोड़े जो स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट थी वहाँ की, 10 मिनट तक खड़ी रही फिर चली आई। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था हमारे मीडिया के द्वारा कि शायद ये हरकत इन्होंने फिल्म को हिट कराने के लिए की है, और ऐसा होता है हमारे यहाँ अक्सर, जो विवाद आते हैं फिल्मों को लेकर के वो रिलीज से पहले आते हैं और लोग सोचते हैं कि भाई इसी बहाने थोड़ा सा लोग देखने चले जाएंगे, मगर अफसोस ये हुआ कि इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो बहुत कम हुआ, और उससे सिद्ध हो गया कि ये बिल्कुल ढेर हो गई। हालांकि इसके पीछे काफी बड़े पैमाने पर जो काला फिल्मों के निर्माता हैं, जैसे अनुराग कश्यप हैं, अभिनव सिन्हा हैं, ऐसे बहुत से कलाकार लगे हुए थे इसको प्रमोट करने में, इसका बयान देने में, और नागरिकता कानून के खिलाफ और जेएनयू के स्टूडेंट्स के पक्ष में बयान देने में, लेकिन उससे तो कुछ नहीं हुआ। उधर देवगन की फिल्म तानाजी भी रिलीज हुई इसी दिन फ्राइडे को, तानाजी ने इससे बेहतर कहीं कमाई की, 15 करोड़ रुपया पहले दिन उन्होंने कलेक्ट किया और देवगन ने उसको राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया। तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि जिस फिल्म का कोई जिक्र ज्यादा नहीं था, कोई हाइप नहीं था, वो ज्यादा बेहतर कर गई, और जिसका हाइप कराया गया वो गिर गई।
सुधीश जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
जी धन्यवाद आपका, और अपने सुनने वालों को हम मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देते हैं जो 15 तारीख को पड़ रही है।
जी आपको भी।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें, SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।